नमस्कार भारत, तारीख 29 सितंबर दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। भारत अफगानिस्तान बांग्लादेश और भूटान के हिस्सा न लेने के फैसले के बाद इस्लामाबाद का सार्क सम्मेलन टला। कितना बड़ा धक्का है ये पाकिस्तान के लिए?
बुनियादी तौर पर सार्क तंजीम को हिंदुस्तान ने जानबूझ के सैबोटाज किया है, तो ये धचका अगर है तो ये धचका इलाकाई तावुन के लिए है।
खबरों के मुताबिक नरेंद्र मोदी आज पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले दर्जे पर कर सकते हैं पुनर्विचार।
मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो इंडिया ने पाकिस्तान को दिया हुआ है, बट आप देखिए कि आज तक उसमें अमल कहां हुआ। इतने सारे बैरियर्स इन्होंने लगा के रखे हुए हैं।
कर्नाटक ने कहा कि जब तक दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक नहीं होती वो पानी नहीं छोड़ेगा। कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। पाकिस्तान ने नवंबर में होने वाली सार्क शिखर बैठक को आगे बढ़ा दिया है। कल भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी इस्लामाबाद में होने वाली सार्क शिखर बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था। नेपाल के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जाविंद्र प्रसाद दयाल ने बताया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत ने आधिकारिक तौर पर बैठक में भाग नहीं लेने की जानकारी दी है। इससे पहले भारत ने कहा था कि क्षेत्रीय सहयोग और चरमपंथ एक साथ नहीं चल सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 11 सितंबर विधेयक पर लाए गए वीटो को दरकिनार करने के पक्ष में मतदान किया है। बराक ओबामा ने कहा है कि एक विधेयक पर उनके वीटो को खारिज करके संसद के फैसले ने एक खतरनाक मिसाल कायम की है। ओबामा ने कहा कि इस बिल को पारित करने के संसद के फैसले से राष्ट्रपति के संप्रभुता के अधिकार की अवधारणा खत्म हो जाएगी। ओबामा ने उस विधेयक पर वीटो किया था जिसके मुताबिक 11 सितंबर हमलों के पीड़ित परिवारों को अधिकार मिला था कि वो सऊदी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल ने संसद में कहा कि उन्होंने क्यों राष्ट्रपति का विरोध और बिल का समर्थन किया।
These families will never get back their loved ones, but they deserve justice and a day in court.
पीड़ित परिवारों को उनके प्रियजन कभी वापस नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वे इंसाफ के हकदार हैं और इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज हम राष्ट्रपति के वीटो को दरकिनार कर देंगे। इस त्रासदी के 15 सालों बाद भी हम अभी तक तथ्य जुटा रहे हैं, लेकिन इसके भरपूर सबूत हैं कि सऊदी सरकार या फिर सऊदी सरकार में शामिल संस्थाएं हैं जिन्होंने अमेरिका में इतने भीषण अपराध के लिए उकसाया और मदद मुहैया कराई है। रिचर्ड ब्लूमेंथल के शब्द। राष्ट्रपति ओबामा के 8 वर्षों के शासनकाल में यह पहला मौका है जब उनके वीटो को संसद ने दरकिनार किया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने रूस के विदेश मंत्री सरगई लेवरो को चेतावनी दी है कि अगर एलेपो में हमला रोकने के लिए रूस ने तत्काल कोई कदम नहीं उठाया तो वाशिंगटन सीरिया वार्ता तोड़ देगा। अमरीका एलेपो शहर के हालात के लिए रूस को जिम्मेदार मानता है। यूनिसेफ के मुताबिक विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पूर्वी एलेपो में कम से कम 96 बच्चे मारे गए हैं और 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। रूस का कहना है कि रूसी सेना सीरिया में नागरिक मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कड़ाई से पालन करते हुए चरमपंथी संगठनों के खिलाफ अपनी लड़ाई में जुटी है। नाइजीरिया के तेल मंत्री ने कहा है कि तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने तेल के दाम बढ़ाने के लिए इसके उत्पादन को कम करने पर सहमति जताई है। ओपेक की नवंबर में होने वाली बैठक से पहले सभी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। आठ साल में पहली बार बनी सहमति की खबर के बाद तेल के दाम में तेजी आई जो बढ़कर करीब $50 प्रति बैरल हो गई। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 देशों के बहिष्कार के फैसले के चलते नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क शिखर सम्मेलन को फिलहाल टाल दिया गया है। भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा न लेने का फैसला किया था। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि नियमों के मुताबिक अगर एक भी सदस्य देश का राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष सम्मेलन में हिस्सा न लेने का फैसला करता है तो इसे स्थगित कर दिया जाता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान उस रास्ते पर चलना जारी रखे हुए है जिसके कारण भारत को ये फैसला लेना पड़ा। भारत के सार्क में हिस्सा न लेने और सार्क को आगे बढ़ाए जाने पर भारतीय पक्ष रखते हुए पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर ने बीबीसी से कहा,
अब इस बार जो हुआ है हम देख रहे हैं काफी अच्छे से कि ये जो उरी में जो हमला हुआ था भारतीय फौज पर, तो उसका मौजूदगी में और उसके होने पर मुमकिन नहीं लगा कि भारत और पाकिस्तान के नुमाइंदे एक जगह बैठ के आमतौर की बातें होती हैं साक में वो फिर शुरू कर पाए। टेंशन तनाज है वहाँ रीजन में इन दोनों मुल्कों के बीच में, इसके ये मायने हमें झट से इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि साक खुद खतरे में है।
ये थे भारत के पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर। सार्क सम्मेलन को टाल दिए जाने को पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है? पाकिस्तान के सांसद मुशाहिद हुसैन ने बीबीसी उर्दू से कहा,
मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर तो ये तो सार्क तंजीम को हिंदुस्तान ने जानबूझ के सैबोटाज किया है, तो ये धचका अगर है तो ये धचका इलाकाई तआवुन के लिए है कि एक तंजीम 30 साल से जो सब ने मुश्तरका तरीके से कायम की थी उसको पहली मरतबा एक मुल्क ने अपनी पाकिस्तान दुश्मनी के बुनियाद पर इसको गड़बड़ किए, ख़राब किया, तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। और मेरे ख्याल में ये बात बाकी लोग भी देखेंगे जो इलाके में हैं कि ये तंजीम का अब शायद, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये बिगिनिंग ऑफ द एंड तो नहीं है फिर, क्योंकि अगर ये एक रवायत पड़ गई है जो अच्छी नहीं है तो आइंदा फिर और भी ऐसे मसाले कायम हो जाएंगी।
ये थे पाकिस्तान के सांसद मुशाहिद हुसैन। भारत और पाकिस्तान के कभी गर्म तो कभी ठंडे रिश्तों के चलते दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया सार्क का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सका है। इन मुश्किल संबंधों का सार्क के क्रियान्वयन और इलाके के छोटे देशों पर क्या असर पड़ा है, इसे कैसे देखते हैं? हमारे सहयोगी विनीत खरे ने यही सवाल रखा नेपाल के पूर्व विदेश और वित्त मंत्री डॉक्टर रामशरण महत के सामने।
निर्माण के बाद इसके जो इम्पैक्ट होना था तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अल्दो ठीक नहीं है। अब पाकिस्तान इंडिया के कारण अथवा इंडिया श्रीलंका के कारण समिट नहीं हुआ है, लेकिन सब्सटेंटिव टर्म में इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्दो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट थे, दिस शुड नॉट हैव हैपन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, बट इवन इफ इट डज टेक प्लेस इट हैज इट विल मेक नो सब्सटेंटिव डिफरेंस।
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर महत?
क्योंकि सार्क का निर्माण हुआ करीब 30 साल तो हुआ है, लेकिन सार्क के कारण यहाँ के जीवन स्तर में कुछ सुधार आया है। हमारा इंटरनल रीजनल ट्रेड देखिए, सार्क रीजन के ट्रेड इट इज इंट्रा रीजनल ट्रेड इज ओनली 5% ऑफ द टोटल ट्रेड। ये तो रीजनल कोऑपरेशन तो है ही नहीं, 30 वर्ष हुआ है सार्क का जन्म हुआ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द पीपल इज वेरी मार्जिनल।
अब फिर इसका फिर फायदा क्या है सार्क का? फिर जिस पर्पस के लिए बना था, रीजनल कोऑपरेशन की बात लेकर बना था, उसका तो कुछ हुआ नहीं है,
उसका खास हुआ नहीं, सब्सटेंटिव प्रोग्रेस हुआ नहीं। जब तक मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि जब तक इंट्रा रीजनल ट्रेड नहीं बढ़ेगा, जब तक इंट्रा रीजनल इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड नहीं हुआ, तो द कोर एस्पेक्ट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन वो मेटेरियलाइज हुआ नहीं, पार्टली बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध है। इन एनी केस छोटे मुल्क तो रिसीविंग एंड में ही है, पहले भी थे अभी भी है, रीजनल कोऑपरेशन से भी खास छोटे मुल्क का।
डॉक्टर महत, आपकी सलाह क्या होगी? मतलब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नेता अगर आपके आमने सामने बैठते हैं तो सलाह क्या होगी आपकी?
सलाह तो दे मस्ट बेटर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए। ये जो टेररिज्म आतंकवाद ये बहुत बड़ा समस्या है, आतंकवाद को स्टेट लेवल से किसी भी तरह वो संरक्षण होना नहीं चाहिए।
ये थे नेपाल के पूर्व विदेश और वित्त मंत्री डॉक्टर रामशरण महत। खबरों के मुताबिक आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि सर्वाधिक तरजीह वाले राष्ट्र के दर्जे पर पुनर्विचार कर सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान को MFN स्टेटस 1996 में दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को ये दर्जा नहीं दिया। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने पाकिस्तान के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख यूनुस मोहम्मद बशीर से संपर्क साधा और पूछा कि भारत द्वारा पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने का दोनों देशों के व्यापार पर कितना असर पड़ा है।
मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो इंडिया ने पाकिस्तान को दिया हुआ है, बट आप देखिए कि आज तक उसमें अमल कहाँ हुआ है। इतने सारे बैरियर्स इन्होंने लगा के रखे हुए हैं कि आपको पता होगा कि हमारे सैकड़ों की तादाद में जो बहुत से ऐसे कंट्रीज जिसमें हमारे फ्रेश फ्रूट वगैरह इस तरह की बहुत सी चीजें थी जो कि वो सारी पोर्ट पे सड़ा दी गई, खराब कर दी गई और क्लियर नहीं किया गया। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का नो डाउट इंडिया ने दिया था पाकिस्तान को स्टेटस, बट उसके बाद इस पर अमल नहीं हुआ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद इंडिया जो है ना आज इस बारे में कोई रिव्यू कर रहे हैं कि शायद इसको दोबारा विड्रॉ कर लिया जाए। जैसा कि
1996 में जब MFN दिया गया था पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ और आज की तारीख में ट्रेड कितना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में?
देखिए मैं आपको बताऊं, इस बात असल ये है कि जब MFN दिया गया उस वक्त देने के वक्त जो बातें हुई उस पर कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने अमल नहीं किया। मेरी कहने का ये मतलब अगर उस पर अमल हो चुका होता ना इंडियन गवर्नमेंट ने जो बैरियर्स लगा के रखे हुए हैं वो अगर ना लगाए होते तो आज हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा हो जाता। देखिए मेरी बात सुनो, ये ट्रेड जो है ना ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में दोनों इंडिया पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुल्कों के लिए फायदा मंद है कि मैं अगर कोई केमिकल्स मंगाता हूँ जो कि यूरोप पे भी बनता है इंडिया पे भी बनता है, अगर मैं यूरोप से लूंगा तो नंबर वन यूरोप की वैसे ही इनपुट कॉस्ट तो ज्यादा होती है तो वो महंगा होता है, इसके बाद वहां से मुझे फ्रेट ज्यादा लगता है, उसके बाद वहां से आते हुए शिपमेंट जो है ना वो हफ्तों लगते हैं। इंडिया से मैं लेता हूँ रेट भी सस्ता, चीज भी वही, रेट भी मेरा कम और 2 से 3 दिन के अंदर मेरे पाकिस्तान के पोर्ट पे कराची पोर्ट पे पहुंच जाते हैं माल, तो मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट जो है ना वो भी कम हो जाती है। तो मुझे बताएं एक बात कि पाकिस्तान नहीं आज जो बिजनेसमैन है वो प्रेफर किसको करेगा, जहाँ के हर चीज का एडवांटेज, बट इंडिया ने वो एडवांटेज ऑन डॉक्यूमेंट ऑन पेपर तो दिया, ऑन रिकॉर्ड तो आया, बट उस पर प्रैक्टिकली कभी भी अमल नहीं हुआ। इसी वजह से हमारी ट्रेड जो है वो ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने उस पर निचले लेवल पे इस तरह के बैरियर लगा दिए, इस तरह के कानून बना दिए, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लेके आए कि वो मामला ट्रेड बढ़ना था वो बढ़ ही नहीं सकता।
जी नहीं, लेकिन लेकिन बशीर साहब यहाँ जो शिकायत है, जी यहाँ शिकायत ये है कि भाई 1996 में हिंदुस्तान ने दिया लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो रेसिप्रोसिटी नहीं हुई, पाकिस्तान की तरफ से MFN स्टेटस जो जिसका यहाँ पर इंतजार था कि पाकिस्तान की तरफ से मूवमेंट होगा वो नहीं आया।
आप क्या ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इंडिया ने MFN पे साइन किया और इसको एक डॉक्यूमेंट बना के रख दिया गया ड्रॉ के अंदर, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान
नहीं, लेकिन सिंबॉलिक मूव्स भी तो होते हैं ना बशीर साहब।
सर मेरी आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं बिल्कुल टोटली 100% एग्री, बट मैं बताऊँ एक बात कि हम भी अब एज ए बिजनेस कम्युनिटी एज ए चेंबर हम भी गवर्नमेंट को कहना चाहिए और हम कहते हैं कि बट सबसे बड़ी बात ये मुझे बताएं कि जब मुझे MFN इंडिया ने दिया है और मुझे MFN का कोई फायदा बिजनेस कम्युनिटी को नहीं हो रहा तो मैं किस मुंह से जाके अपनी हुकूमत को कहूंगा कि जी आप इंडिया को मुझे मोस्ट फेवर्ड नेशन दे।
लेकिन उसमें जो जो आरोप लगते हैं कि भाई उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा हो जाती है और पाकिस्तान इसे एज अ टैक्टिकल एडवांटेज इस्तेमाल करता है, ये आरोप लगते हैं, इसलिए MFN स्टेटस इंडिया को नहीं दिया जाता और यहाँ पर ये मूड है कि भाई इतने साल से अगर हमने दे रखा है और पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला तो फिर हम क्यों उसे बरकरार रखें?
देखिए ये तो वो उस बात पे कहा जाता है कि जो एक पिक्चर सामने आप लोगों के है जो कि विच इज नॉट ट्रू, उस वजह से इंडिया की जो है ना अगर आप ये जो मैं बात कह रहा हूँ अगर ये आप ये बात पब्लिक को पता चले कि इंडिया ने अगर MFN दिया भी है तो ना होने के बराबर है।
ये थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख यूनुस मोहम्मद बशीर, जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी विनीत खरे। कार्यक्रम में अब हम सीधे चल रहे हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वरिष्ठ पत्रकार एहतिशामुल हक के पास। एहतिशाम साहब, अभी हम MFN की चर्चा कर रहे थे और सबसे बड़ी खबर जैसा कि आप जानते हैं और पूरे भारत और पाकिस्तान के सभी लोग लगभग जानते हैं कि SAARC की बैठक जो है वो टल गई है। जो पाकिस्तान में राजनीति है और पाकिस्तान के जो अखबार हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं?
देखिए जी आज सारे बड़े बड़े अखबार जो है ना उन्होंने फ्रंट पेज पे बैनर हेडलाइन से ये SAARC समिट की मुलतवी होने की खबरें दी हैं। मेरे सामने अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार डॉन पड़ा है, 4 कालमी फ्रंट पेज पे खबर है, ये कह रहे हैं कि जी मोर स्टेट्स ज्वाइन इंडिया टू रैक SAARC समिट। इन्होंने डॉन का एडिटोरियल भी इस पे है अंडरमाइनिंग SAARC, जिसने क्रिटिसाइज किया गया हिंदुस्तान को। और फिर दूसरा अखबार अंग्रेजी का है द न्यूज़, ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्पिरेसी सक्सीड एज SAARC समिट पोस्टपोन। उसके बाद उर्दू का अखबार डेली पाकिस्तान की तरफ से बैनर हेडलाइन है इनकी कि भारतीय हठधर्मी और साजिश की वजह से इस्लामाबाद में होने वाली SAARC समिट मुलतवी। फिर इसी तरह से इस्लामाबाद से अंग्रेजी का अखबार है पाकिस्तान ऑब्जर्वर, इसकी हेडलाइन है सरताज कन्फर्म SAARC समिट पोस्टपोन। उसके बाद दुनिया अखबार है बड़ा ये लिखता है कि जी भारत अफगानिस्तान भूटान और बांग्लादेश का बाइकॉट, पाकिस्तान में साठ समिट मुलतवी। फिर ये चीन का एक बयान फ्रंट पेज पे है, कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकफ की कदर करते हैं। फिर एक और इनका बयान है, भारत ने सार्क कॉन्फ्रेंस तोड़ने की साज बेट डाल दी। तो आमतौर पर तो ये अखबार सारे आज जो है ना वो यही बता रहे हैं,
लेकिन इन सारे अखबारों में क्या एहतिशाम साहब, इन सारे अखबारों में विलन भारत को बताया जा रहा है?
देखिए जी बिल्कुल, किसी ने भी इस हवाले से जो है ना वो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की गलती है, और बहुत सारी बातों पे जहाँ क्रिटिसाइज किया गया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक होनी चाहिए, सफारती सतह पे मामला कश्मीर को उठाना चाहिए, तो लेकिन इस हवाले से सारा इल्ज़ाम आरोप जो है ना वो हिंदुस्तान पे लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ये जान बूझ के कत्ल किया है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर से मौकफ पाकिस्तान का तब्दील करना चाहता है, और उन्होंने दबाव डाल के भूटान पे बांग्लादेश पे अफगानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस मुलतवी करा दी है। तो जनरली ये सारे अखबार में हिंदुस्तान पे तनकीद ही हो रही है तरफ की।
एक और चीज़ जानना चाहेंगे एहतिशाम साहब कि भाई ये तो हमने बात की, अखबार क्या कह रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी क्या चल रही है?
देखिए जी जिस तरह पाकिस्तान में सियासत चल रही है, नवाज शरीफ साहब को बड़ा सामना करना पड़ रहा है पनामा करप्शन के चार्जेस की वजह से, वो तो सारी पार्टियां उनके खिलाफ, पीपल्स पार्टी भी पीएमएलएन भी के खिलाफ बात कर रही है, और तहरीक इंसाफ इमरान खान की भी बात कर रही है, लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके से माहौल तब्दील हो रहा है और ये जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है और फिर जंग की बातें हो रही हैं, तो उस हवाले से सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो एक पेज पे आ गई है। वो कहते हैं कि जी अपने झगड़े हम निपटा लेंगे, लेकिन क्योंकि अब कश्मीर का मसला है, हिंदुस्तान का मसला है, वो जनरली जो है ना वो ये कह रहे हैं कि हम सारे इकट्ठे हैं और नवाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। तो एक शायद ये वाइड पहलू रह गया कि आजकल के हालात में कि सारी सियासी पार्टियां इस मौके पे इकट्ठी हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो मामला इस वक्त है वो उस पे सारे इकट्ठे हो जाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सीधे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए एहतिशाम साहब। अब हम यहाँ पर भारत के अखबारों का जिक्र कर लेते हैं। अमर शर्मा, निश्चित तौर पर भारत के भी सभी अखबारों की सबसे बड़ी खबर जो है वो सार्क समिट का टलना है। इस हवाले से, इस खबर से जुड़ी हुई खबरें क्या हैं?
जी मोहनलाल जी, लगभग आपने जैसा कहा सभी अखबारों में ये पहली खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अपनी पहली खबर बनाया है अपने जो आधे पन्ने पर जो सप्लीमेंट के साथ में देते हैं, कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी टीवी चैनल समा को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा पर खतरा लगता है तो वो भारत पर परमाणु हथियार चला सकता है।
ये उनका बयान है?
जी ये उनका बयान है, ये अखबार ने छापा है। और लगभग सभी जनसत्ता ने, हिंदी अखबार जनसत्ता ने अपनी
अमेरिका की नसीहत बताई है कि तनाव कम करें भारत और पाकिस्तान,
दक्षिण की खबर को पहली खबर बनाकर इसे ठीक अपनी दूसरी खबर बनाया कि अमेरिका ने नसीहत दी है। कि विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने मंच से कई बार ये बात कही है कि हम भारत व पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य और निकट होते देखना चाहते हैं, लेकिन जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से दक्षिण शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने के भारत के फैसले पर टिप्पणी मांगी गई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों को हित में कि वे तनाव को दरकिनार करें और संचार के अधिक माध्यम स्थापित करें। वहीं एक और खबर है जो आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो जनसत्ता में भी छपी है और दैनिक भास्कर में भी, कि वॉल स्ट्रीट जो अमेरिका का अखबार है उसमें छपा है कि पाकिस्तान रणनीतिक संयम की भारत की नीति को अधिक समय तक हल्के में लेने की गलती ना करे। यदि इस्लामाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग के प्रस्ताव को खारिज कर देता है तो यह पाकिस्तान को अछूत राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कदम होगा।
मैं बहुत संक्षेप में इस खबर के अलावा बाकी की खबरें क्या हैं?
जी अन्य खबरों की बात करें तो द हिंदू में एक खबर छपी है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स बीट अप इन झज्जर कॉलेज, झज्जर के कॉलेज में कश्मीरी छात्रों की पिटाई कर दी, वहाँ के कॉलेज के स्टाफ ने, गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने और कई उनके साथी छात्रों ने कर दी है। दरअसल ये मामला एक छोटे से झड़प से शुरू हुआ कि उन्होंने बिहार के एक छात्र कासिम पर पानी छिड़क दिया था, जिसके बाद उन्होंने उन पर टिप्पणी कर दी थी कि वो कश्मीर के आतंकी हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अमर शर्मा अखबारों की सुर्खियाँ पढ़ने के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कहा है कि वो तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े, लेकिन कर्नाटक का कहना है कि वो दिल्ली में होने वाली मुख्यमंत्रियों की जब तक बैठक नहीं होती वो पानी नहीं छोड़ेगा। ये फैसला कल राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। पूरा विवरण सुनिए इमरान कुरैशी से।
कर्नाटका अपना रुख बदल नहीं रहा है। सर्वदलीय बैठक और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश में दो हिस्से थे। पहले हिस्से में कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलवाएं और समझौता लाने की कोशिश करें। दूसरे हिस्से में कोर्ट ने कहा था कि कर्नाटका 6000 क्यूजेक्स पानी तमिलनाडु को अगले 3 दिन छोड़ें। तो क्या कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा है? सिद्धरामैया ने कहा,
We are aware of it and we are also aware of the resolution passed in the legislature.
देखिए, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, हमें विधानमंडल का प्रस्ताव भी पता है और सर्वदलीय बैठक की सिफारिशें भी। हम कल की बैठक में ज़मीनी हकीकतें पेश करेंगे और ये भी कहेंगे कि हमें पीने के पानी की ज़रूरत है। उसके बाद हम अगले कदम उठाएंगे। क्या हमें फिर से विधानसभा की बैठक बुलवाना चाहिए या नहीं, इस पर भी हम सोचेंगे। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। दरअसल सिद्धरामैया के बयान से यह स्पष्ट होता है कि कर्नाटका वही बात पर अटल है, वो यह कि उसके पास जो भी पानी है वो सिर्फ पीने के पानी के लिए बेंगलुरु मैसूरू जैसे शहरों के निवासियों के लिए अगले जून तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि पानी छोड़ने की देरी के वजह से सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेगी। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
रुख अंतर्राष्ट्रीय खबर का करते हैं। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो अलप्पो में बमबारी जारी रखता है तो अमेरिका सीरिया वार्ता को तोड़ देगा। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरूफ से फोन पर बात की और कहा कि अमरीका अलप्पो शहर के हालात के लिए रूस को जिम्मेदार मानता है। रूसी सेना का कहना है कि अलप्पो शहर में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मास्को अमरीका से फिर बातचीत करने के लिए तैयार है। यूनिसेफ के मुताबिक विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पूर्वी अलप्पो में कम से कम 96 बच्चे मारे गए हैं और 200 से ज्यादा जख्मी हैं। रूस का कहना है कि सीरिया में नागरिक मौतों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है और वो चरमपंथी संगठनों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवरो को चेतावनी दी है कि अगर एलेपो में हमला रोकने के लिए रूस ने तत्काल कोई कदम नहीं उठाया तो वाशिंगटन सीरिया वार्ता तोड़ देगा। कैरी ने लेवरो से फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि अमेरिका एलेपो शहर में आग लगाने वाले और बंकर बम के इस्तेमाल के लिए रूस को जिम्मेदार मानता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि एलेपो पर हमला रोकने की जिम्मेदारी रूस की है। उन्होंने कहा,
The message to the foreign minister today was that we're perfectly willing and able to move forward.
विदेश मंत्री को संदेश दे दिया गया है कि हम सीरिया पर अमेरिका रूस की द्विपक्षीय वार्ता को तोड़ने का फैसला लेने और उस पर अमल करने को तैयार हैं। अगर रूस ने निकट भविष्य में ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे ये दिखाई दे कि वे युद्ध विराम के समर्थन और राजनीतिक वार्ता की बहाली में इच्छुक हैं। जॉन किर्बी के शब्द। एक हफ्ते पहले युद्ध विराम के ढह जाने के बाद एलेपो शहर में भीषण हवाई हमले हो रहे हैं। शहर के विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पूर्वी हिस्से में करीब 2.5 लाख लोग फंसे हुए हैं। ये लोग रूस समर्थित सीरियाई सेना की घेराबंदी के कारण फंस गए हैं, जिसने इलाके पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के लिए भीषण अभियान शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इस इलाके में पिछले 5 सालों से जारी संघर्ष के इतिहास में ताजा बमबारी सबसे भीषण है। अमरीका ने रूस पर आरोप लगाया कि वो नागरिक ठिकानों पर हवाई हमले में शामिल है और शायद युद्ध अपराध को अंजाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक पूर्वी एलेपो में शुक्रवार से कम 96 बच्चे मारे गए हैं और 223 लोग जख्मी हुए हैं। एलेपो की घेराबंदी वाले पूर्वी हिस्से में मंगलवार की रात को हवाई हमले लगातार जारी रहे। स्थानीय चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि बमबारी के कारण 2 बड़े अस्पतालों में सेवाएं बंद हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने 2 अस्पतालों पर हुए हमले की खबर की निंदा की और इसे युद्ध अपराध करार दिया। बान की मून ने पूर्वी एलेपो की स्थिति को बूचड़ खाने से भी बदतर बताया है। वहीं रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि वह सीरिया में युद्ध अपराध का दोषी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक प्रवक्ता दिमित्री पेशकोव ने बीबीसी को बताया कि रूसी सेना उन्हीं पर निशाना साध रही है जिन्हें वो चरमपंथी संगठन मानते हैं। उन्होंने कहा,
We cannot agree with these accusations.
मैं संभावना को सिरे से खारिज करता हूँ कि रूसी सेना और वायुसेना नागरिकों पर हमले में शामिल है। ये नामुमकिन है। रूसी सेना चरमपंथी संगठनों के खिलाफ अपनी लड़ाई में जुटी है। दिमित्री पेशकोव के शब्द। पेशकोव ने कहा कि रूसी सेना सीरिया में नागरिक मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। अमेरिका और रूस वार्ता के जरिए एक नाजुक शांति समझौते में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते अमेरिका ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में रूस ने अमेरिका के इरादों के बारे में खुलेआम झूठ बोला है। वहीं रूसी सेना का कहना है कि एलेपो शहर में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मॉस्को अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है।
अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो अलेप्पो में बमबारी जारी रखता है तो अमेरिका सीरिया वार्ता को तोड़ देगा।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। लोढ़ा समिति अब बीसीसीआई के मनमाने फैसलों को मंजूर नहीं करना चाहती। उसने कल कड़े शब्दों में कहा कि अब बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और दूसरे पदाधिकारी अपना पद छोड़ें। पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन से बात की।
तनाव टकराव तो क्या वो तो पहले से ही था, लेकिन अब ये तो एक कोर्ट है। बीसीसीआई को शायद अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई राइवल बॉडी है उसके साथ लड़ रही है। ये तो कोर्ट को डिफाई कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका नतीजा यही निकलता है, अगर आप लिम्बिमेंट नहीं करते हो तो फिर आपको जेल जाने तक की नौबत आ सकती है।
ये श्रीनिवासन की राह पर चल पड़ी है बीसीसीआई, क्योंकि वो भी ऐसा समझ बैठे थे कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, लेकिन दो टीमों को आईपीएल से बाहर जाना पड़ा, उनकी अपनी कुर्सी चली।
वो तो तब तक था जब तक कि कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया था। ये तो कोर्ट ने फैसला दे चुके हैं, आप तो कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं हो। क्या सोचकर बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स ऐसा कदम उठा रहे हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है, और अब कोर्ट ने जो चीजें कही हैं और जो लोधार कमीशन ने स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है उससे तो साफ जाहिर है कि या तो इनको लग रहा है कि शायद कोई पार्लियामेंट बचा लेगी, सरकार बचा लेगी, अदरवाइज तो मैं तो नहीं समझता कि आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इस तरह से डिफाई किया गया।
हमारे आम श्रोता जिन्हें सीधे सीधे समझ में आ सके कि वो ऐसे कौन से मुद्दे जिन्हें बीसीसीआई उन्हें मानने में आनाकानी कर रही है।
देखिए कुछ नहीं है, ये लोधा पैनल की सारी रिकमेंडेशन मानने को तैयार है, उनमें कोई ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने एक उम्र का और दूसरा जो 6 साल का जो टेन्योर है उसमें ब्रेक 3 साल का, वो कोई मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि अभी तक जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं अनुराग ठाकुर से लेके राजीव शुक्ला तक, जब ये इम्प्लीमेंट होगा उनको छोड़ने पड़ेंगे अपने पद, क्योंकि उन्होंने 15-15, 20-20 साल तक ऑफिस बेयरर रह चुके हैं। तो ये लड़ाई इंडिविजुअल लोग बोर्ड को तहस नहस करने पे लगे हुए हैं ताकि उनकी कुर्सियां बची रहें, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिनको वो मानने को तैयार नहीं है।
जब लोढ़ा पहलन ने साफ कहा था कि 3 चयन समिति में सदस्य होना चाहिए तो फिर क्यों उन्होंने 5 रखे?
ये डिफाई कर रहे हैं, ये 3 के 5 ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ ये बड़ी जाति हो रही है, बड़े गलत ये रिकमेंडेशन है। तो ये सारी दलीलें इन्होंने कोर्ट में दे रखी है, इन्होंने कोर्ट में ये सब जो मुद्दे हैं ये रखे गए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अब ये बोल रहे हैं कोई नई बात है, लेकिन अब वो वहाँ पे कोर्ट ने उनकी बात मानी नहीं, उन्होंने जजमेंट दे दी, तो अब ये मुद्दे दोबारा उठाना तो मेरी समझ से बाहर है। इसका मतलब क्या है? देश के सबसे बड़े उच्चतम न्यायालय को आप समझते हैं कि वो कोई एक खिलौना है कि आप जो मर्जी बोलते हैं उनके खिलाफ उनकी जजमेंट ना सुने, और ये बड़ी हैरत वाली बात है।
एक आखिरी सवाल, आपको लगता है ये जो 6 तारीख का समय दिया गया अगली सुनवाई के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा?
वो महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि अगर बोर्ड को तो या तो दलीलें देनी पड़ेगी कि वो किस वजह से ये टल गया, ये नहीं बोर्ड कह सकती कि नहीं हम मानने को तैयार नहीं है, वो रीजन देना पड़ेगा कि भाई वो हम क्यों नहीं जवाब दे रहे थे। और मैं समझता हूँ अगर वो रीजन जेन्युइन ना हुए या उनमें कोई दलील सही ना हुई तो कोर्ट का ऑर्डर 6 तारीख को बहुत सख्त हो सकता है, जिसमें शायद बोर्ड के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इन सबको जाना पड़े।
ये थे क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन, जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त। और आपको बता दें कि लोढ़ा समिति का आरोप है कि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं माने हो, इसलिए ठाकुर समेत अन्य पदाधिकारियों को पद से हट जाना चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बीसीसीआई खुद को कानून से ऊपर समझता है तो वो गलत है। कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान ने नवंबर में होने वाली शार्क शिखर बैठक को आगे बढ़ा दिया है। कल भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी इस्लामाबाद में होने वाली सार्क शिखर बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 11 सितंबर विधेयक पर लगाए गए वीटो को दरकिनार करने के पक्ष में मतदान किया है। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरो को चेतावनी दी है कि अगर एलेपो में हमला रोकने के लिए रूस ने तत्काल कोई कदम नहीं उठाया तो वाशिंगटन सीरिया वार्ता तोड़ देगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। एक घंटे बाद विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दे, नमस्कार।